नित्यनरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। देखो आज थोड़ा समय लग सकता है, कथा को ऐसे स्थल पर विराम देना चाहिए जहां उत्साह रहता हो। थोड़ा समय लग भी जाए तो कोई बात नहीं, कथा का प्रसंग समाप्ति करें। कल की कथा में आया जयद्रथ मारा गया, पांडव लोग बड़े खुश हो गए, खूब शंख भेरिया बजाते हुए सब आनंद में डूब रहे हैं। परंतु एक बात विचित्र हुई, कौरवों ने युद्ध का शंख नहीं बजाया कि अब शांत हो गया, सूर्यास्त हो गया, अब युद्ध बंद करो, ये शंख नहीं बजाया। क्यों नहीं बजाया कि सब कौरव उस समय जयद्रथ के मारे जाने पर बड़े क्रोधी थे और बड़े दुखी थे। आज उन्होंने युद्ध के सारे नियम तोड़ दिए और विचार करने लगे कि रात्रि में ही युद्ध करेंगे। हे महाराज धृतराष्ट्र, आपका पुत्र दुर्योधन उस समय आंसू बहाकर सबके सामने जोर जोर से रोने लगा। उसके मन से शत्रुओं पर विजय पाने का सारा उत्साह जाता रहा। उसके आंखों के सामने केवल तीन योद्धा नाच रहे थे, सबसे पहले अर्जुन, उसके बाद भीमसेन और तीसरे पांडवों के सबसे अच्छे योद्धा सात्यकी। तीनों ने आज जो कौरव सेना का भारी संहार किया है उसको याद करके आंखों में पानी ले लेकर सोचने लगा कि इस पृथ्वी पर अर्जुन के समान कोई योद्धा नहीं। जब अर्जुन को क्रोध चढ़ जाता है उस समय उसके सामने चाहे द्रोणाचार्य हो, कर्ण हो, अश्वत्थामा हो, कृपाचार्य हो, कोई नहीं ठहर सकता था। आज के युद्ध में उन्होंने हमारे सभी महारथियों को हराकर सिंधु राज का वध किया है, ये सबसे बड़ी हमको चुनौती दी है। कल उसने सबके बीच में प्रतिज्ञा की थी कि मैं जयद्रथ को मारूंगा, असंभव बात को इसने संभव कर लिया। हमारी इतनी बड़ी सेना को पांडवों ने इस तरह से नष्ट कर डाला कि वो संभल भी नहीं पा रही है। हमने युद्ध के लिए अस्त्र शस्त्र की तैयारी की, जिसके भरोसे पर और जिसके भरोसे पर हमने कृष्ण को एक तिनके के समान समझा, आज उस कर्ण को भी अर्जुन ने युद्ध में धूल चटा दिया। हे धृतराष्ट्र, सारे जगत का अपराध करने वाला आपका पुत्र दुर्योधन जब इस प्रकार सोचते सोचते मन में बड़ा व्याकुल हो गया तो वो एक जगह ठहर नहीं सका। अपने लंबे लंबे बड़े बड़े कदम बढ़ाता हुआ, बहुत बड़े अमर्ष में भरा हुआ, द्रोणाचार्य के पास गया और द्रोणाचार्य को कहा, आचार्य, अर्जुन ने आज हमारी सात अक्षौहिणी सेना का नाश किया है। आज आपके शिष्य अर्जुन ने आपके शिष्य जयद्रथ का वध किया है, जिन्होंने हमें विजय दिलाने की इच्छा से अपने प्राण त्याग कर यमलोक की राह ली है। उन उपकारी सूर्यों का ऋण हम कैसे चुका सकेंगे? गुरुदेव, जो भूपाल हमारे लिए भूमि को जीतना चाहते थे वे स्वयं भूमंडल का ऐश्वर्य त्याग कर हमारे लिए भूमि पर सो रहे हैं। स्वार्थ के लिए मित्रों का संहार करके अब मैं हजार बार भी अश्वमेध यज्ञ करूं तो पवित्र नहीं हो सकता। मैं आचार भ्रष्ट हो गया, पतित हूं, अपने सगे संबंधियों से मैंने द्रोह किया, राजाओं के समाज में मेरे लिए पृथ्वी फट क्यों नहीं गई जिसमें मैं उसके अंदर समा जाता। गुरुदेव, एक तरफ मेरे पितामह लहू लुहान होकर बाण सैया पर पड़े हैं, वे एक तरह से मरे हुए के समान हैं, मैं उनकी रक्षा नहीं कर सका। काम्बुजराज, अलम्बुस, अन्यान्य सुरिदों को मरा देखकर अब मैं जीवित रहकर क्या करूंगा। शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ आचार्य, मैं अपने यज्ञ याग आदि तथा कुआ बावड़ी बनाने आदि शुभ कर्मों की, पराक्रम की, पुत्रों की सौगंध खाकर आपके सामने सच्ची प्रतिज्ञा करता हूं कि अब मैं पांडवों के साथ संपूर्ण पांचाल राजाओं को मारकर ही शांति पाऊंगा, अथवा जो लोग मेरे लिए युद्ध करते करते अर्जुन के हाथ से अपने प्राण खो चुके हैं मैं भी उनके पीछे पीछे चला जाऊंगा। इस समय मेरे सहायक मेरी मदद करना नहीं चाहते हैं। गुरुदेव, औरों की बात तो जाने दीजिए, आप स्वयं हम लोगों की उपेक्षा करते हैं। आपके अंदर अर्जुन का स्नेह उमड़ता है, कभी युधिष्ठिर का स्नेह उमड़ता है, कभी आपको द्रौपदी के ऊपर होने वाले घटनाओं का स्मरण होता है। आपके मन में बार बार विचार आता है कि दुर्योधन का पक्ष लेकर मैं बड़ा अनर्थ कर रहा हूं। यदि ऐसी बात है तो गुरुदेव, आप अपना रास्ता बदल सकते हैं। मैं केवल एक कर्ण को ऐसा देखता हूं जो सच्चे दिल से मेरी विजय चाहता है। जो मूर्ख मित्र को ठीक ठीक पहचाने बिना उसे मित्र के काम पर लगा देता है, उसका सारा काम चौपट हो जाता है। गुरुदेव, आपको पता है जयद्रथ, भूरिश्रवा, अमीशा, शिवी और वसाती मेरे लिए युद्ध में मारे गए। उनके बिना मुझे अब जीने से क्या लाभ है, अतः मैं भी वहीं मरने के लिए जाता हूं। आप तो केवल पांडवों के आचार्य हैं, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। आपकी कही हुई बातों, आपके पुत्र की कही हुई बातों को सुनकर आचार्य द्रोण बड़े घूर घूर करके दुर्योधन को देखने लगे और समय को समझते हुए उन्होंने कहा, दुर्योधन, दिन में तो मैं योद्धाओं के बाणों से बींधा जाता हूं और इस समय तू मुझे वाघ बाणों से बींध रहा है, क्या अपने गुरुजनों का इतना तिरस्कार करके तुम विजयी हो जाओगे? अर्जुन को युद्ध में जीतना असंभव है, ये मैंने तुमको कितनी बार कहा है, कितनी बार भीष्म पिता मैंने तुमको ललकार ललकार के कहा है, दुर्योधन, पांडवों को जीतना असंभव है। तूने जब जुआ खेलना प्रारंभ किया था उस समय विदुर ने कहा था, बेटा दुर्योधन, इस कौरव सभा में शकुनी के ये पासे हैं, यही बाण बंद कर करके तुम्हारे छाती में चुभेंगे, यही बाण हमारे कुरुवंश को नष्ट कर देने वाले होंगे। उस बिचारे हितेशी विदुर की बात को तुमने उपहास में, तिरस्कार में बदल था। विदुर जी धीर पुरुष, महात्मा पुरुष, तेरे कल्याण के लिए बात कही और तू अपने मित्रों के उल्लासपूर्ण विलासपूर्ण बातों में आकर अहंकार के अंदर उनकी बातों को चुनौती देने लगा। और आज जब उन बातों का परिणाम तुम्हारे सामने आता है तो मूर्ख, तुम्हारे अंदर कैसी बुरी भावनाएं पैदा होती हैं। तूने एक सबसे बड़ा अन्याय किया, हम लोगों के सामने द्रौपदी को सभा में बुलाकर अपमानित किया, वह उच्च कुल में उत्पन्न हुई, सब प्रकार के धर्म का पालन करती है, उसका तुमने अपमान किया। गांधारी नंदन, वो द्रौपदी का स्वयं का अपमान नहीं था, संपूर्ण नारी जाति के पवित्र धर्म का अपमान था। यदि इसका यहां फल तुमको न मिलता तो तुमको परलोक में इससे भी भयंकर दंड मिलता। दुर्योधन, तुम्हारे लिए खुशी की बात है कि तुम अपने पाप को यहीं धोए जा रहे हो। पांडव निस्संदेह मेरे पुत्र के समान है, पांडवों का मैं हृदय से आदर करता हूं, विधर्म का पालन करते हैं। मेरे सिवा दूसरा कौन मनुष्य है जो ब्राह्मण कहलाकर भी उनसे द्रोह करे, उनके सामने शस्त्र उठाए? ये तो मेरा दुर्भाग्य है कि मैं उनसे लड़ने जाता हूं। दुर्योधन, तू तो नहीं मर गया था। कर्ण, कृपाचार्य, शल्य और अश्वत्थामा, ये तो सब जीवित थे। फिर सिंधुराज को क्यों नहीं तुमने बचाया? सारी जिम्मेदारी मुझ पर डालते हो। मैंने एक पक्ष में रह करके युधिष्ठिर को रोका था, तो तुम तो वहां थे, सिंधुराज को बचा लेते। राजा जयद्रथ विशेषतः मुझ पर और तुम पर, दोनों पर अपने जीवन की रक्षा का भार रखे हुए थे अर्जुन, तो फिर अर्जुन के हाथ से तुमने रक्षा क्यों नहीं की? कृपाचार्य ने क्यों नहीं की? कर्ण ने क्यों नहीं की? सारा उपालम मुझे देना चाहते हो। आज रात्रि में युद्ध होगा, हमने अभी तक शंख नहीं बजाया है। जो कुछ हुआ है, कौरव सेना यदि बदला लेना चाहे तो आज पांडवों की रात्रि के अंदर युद्ध करके बदला ले सकती है। मेरे पुत्र अश्वत्थामा को कहना कि इस युद्ध के अंदर अपने जीवन की रक्षा करता हुआ सोमक योद्धाओं का संहार करे। दुर्योधन, बड़ों का सम्मान करना सीखो, हित चाहने वालों का आदर करो। तुम्हारा जीवन में मुझे लगता है किसी पर भी विश्वास नहीं है। जाओ और युद्ध के लिए मोर्चा खोलो। दुर्योधन ने युद्ध करने का निश्चय किया और कर्ण से जाकर कहा, देखो मित्र कर्ण, कृष्ण की सहायता से अर्जुन ने द्रोणाचार्य का व्यूह भेद कर सब योद्धाओं के सामने सिंधुराज का वध किया है। मेरी अधिकांश सेना अर्जुन के हाथों नष्ट हो गई है, थोड़ी सी बची है, वो भी भयभीत है। उसको भी जैसे तैसे झूठा उत्साह दिलाकर मैंने इकट्ठा कर रखा है। यदि इस युद्ध में आचार्य द्रोण अर्जुन के सामने खड़े हो जाते तो अर्जुन लाख प्रयत्न कर लेता तो भी उस दुर्भेद्य व्यूह को नहीं तोड़ सकता था। परंतु द्रोण के हृदय में तो पांडव जो बसे हुए हैं, तभी तो आचार्य ने जयद्रथ को अभयदान दिया और दूसरी तरफ अर्जुन को व्यूह में घुसने का मार्ग बताया। देखा आचार्य की चतुराई। या तो उस समय जयद्रथ को कह देते कि जयद्रथ जाओ कहीं अपने जाकर गुफा में छिप जाओ, आज मैं अपनी बहन को क्या कहूंगा, वो विधवा हो गई और मैं भी द्रोण से अभय पाकर उस पर विश्वास किया और जयद्रथ को अपने सेना में रहने दिया, और आज हमारे कितने भाई भीमसेन के हाथ से मारे गए। कारण क्या करना चाहिए? आचार्य ने तो रात्रि में युद्ध छेड़ दिया है। कर्ण ने कहा, दुर्योधन अपने से बड़ों की निंदा करते हो, ये तुम्हारा सबसे बड़ा पाप है। और वो आचार्य तुम्हारे गुरु हैं, उन पर संदेह मत करो। तुम विचार करो कि पांडवों के प्रति इतना प्रेम रखते हुए, विजय का आशीर्वाद देते हुए तुम्हारे पक्ष में युद्ध कर रहे हैं। किसी भी मनुष्य में देखो तो गुण देखो दुर्योधन, अवगुणों पर दृष्टि क्यों जाती है? अर्जुन द्रोण का उल्लंघन करके सेना में घुस गए, इसलिए इसमें द्रोण का कोई दोष नहीं है। मैं भी तो वही युद्ध में था, मेरे सामने सिंधुराज मारा गया, तुम भी तो थे और भी तो कई योद्धा थे। ये सब प्रारब्ध है, भाग्य है। भाग्य से जीना मरना होता है, सिद्धि दैव के अधीन है। हम लोगों ने कपट करके क्या क्या पांडवों के साथ अन्याय किया। सुनो दुर्योधन, क्या तुमने भीम को विष नहीं दिया? क्या तुमने लाक्षागृह में पांडवों को जलाने का प्रयत्न नहीं किया? क्या तुमने जुए में उनको कपट से नहीं हराया? क्या उनको तुमने राजनीति का सहारा लेकर वन में नहीं भेजा? हमसे जो कुछ नीचता हो सकती थी वो सब हमने की, लेकिन पांडु का प्रारब्ध देखो कितना बलवान, न तो कोई विष मरा, न कोई लाक्षागृह में मरा और न कोई वनवास के कष्टों में मरा, और आज वो तुम्हारे सामने बाण लिए, शस्त्र लिए, बड़ों बड़ों से युद्ध करने के लिए तैयार है। दुर्योधन, योद्धाओं की मनस्थिति कुछ और होती है। चलो, यदि गुरुदेव ने युद्ध की आज्ञा दी है तो युद्ध करना चाहिए। संजय कहते हैं उस रात्रि में जब कहीं कुछ दिखता नहीं था, अंदाजों से लोग बाण चलाते थे, बाणों की टकराहट से जो प्रकाश होता उसके आधार पर वो सैनिक आपस में लड़ते थे। योग की बात थी कि इस युद्ध के अंदर युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों आमने सामने होंगे। युधिष्ठिर क्रोध में भरकर आपके पुत्र को मार डालने की इच्छा से बढ़े, पर अंदर ही अंदर भीमसेन की प्रतिज्ञा का स्मरण भी था। लेकिन क्या युधिष्ठिर ने उस समय युद्ध किया है? उस युद्ध के अंदर उसके रथ बाण सबको काट दिया और वो जाकर किसी दूसरे रथ में बैठ गया। पांचों पुत्र और राक्षस राज घटोत्कच वह भी उस युद्ध के अंदर बड़े वेग से चल रहा था। रात्रि का समय था, द्रोणाचार्य और सिंहदेव में युद्ध हुआ। अपने पराये का कोई ज्ञान नहीं था। धृष्टद्युम्न के पुत्रों और कैकेयों को भी शीघ्रगामी सायकों से घायल करके द्रोणाचार्य ने उनको प्रेतलोक में पहुंचा दिया। द्रोणाचार्य को शत्रु सेना का संहार करते देख प्रतापी राजा शिवी क्रोध में भरकर उनके सामने डटे रहे और द्रोणाचार्य ने फिर उनका भी सिर धड़ से अलग कर दिया। कलिंगराज पुत्र अपनी सेना के साथ भीमसेन पर टूटा। भीमसेन के सामने कहां टिकने वाला? भीमसेन अपने रथ से कूदकर उसके रथ के ऊपर जा गिरा। उसका रथ एकदम टूट गया और उसका गला पकड़ करके एक मुक्के की लगाई, उसकी हड्डी पसली छितर बितर कर दी। भीमसेन ने देखा कि मैं व्यर्थ ही गदा युद्ध करता हूं, मेरे लिए तो सबसे अच्छा उपाय है जो भी योद्धा आए उसके रथ में कूद जाए। ऐसे करके उसने आपके पुत्रों को जहां मारना चालू किया, किसी को चांटे से, किसी को लात से, किसी को मुक्के से। भीम का ये पराक्रम देखकर सब लोग आश्चर्य करने लगे। फिर उसके बाद भीम ने कर्ण के साथ, अश्वत्थामा के साथ, दुर्योधन के साथ, कृपाचार्य के साथ, एक एक के साथ खूब जो है युद्ध किया। और उस समय तुम्हारे दो बेटा दुर्मद और दुष्कर्ण ये सामने आए, तो भीमसेन ने उन दोनों को एक मुक्के से मारकर उनका कचूमर निकाल दिया और दुर्योधन और कर्ण दोनों रोने लगे। राजा लोग कहते थे, अरे ये भीम नहीं है, भीम के रूप में साक्षात भगवान रुद्र प्रकट हो गए हैं और ये कौरवों का संहार करने में लगे हैं, भीम में इतना बल थोड़े। सबके होश उड़ गए। इधर सात्यकी और सोमदत्त का युद्ध हुआ। सोमदत्त था ये भूरिश्रवा का पिता था। सात्यकी के साथ बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। द्रोणाचार्य के पक्ष में खड़ा होकर सात्यकी के साथ बहुत उसने मुकाबला किया। और फिर इधर घटोत्कच था, वो भी सेना के अंदर बड़ा युद्ध करने लगा। सात्यकी और धृष्टद्युम्न इन्होंने द्रोणाचार्य को घेर लिया। अश्वत्थामा इनसे बहुत ज्यादा चिढ़ गया। सात्यकी को मार डालने के लिए उसने तरह तरह के बाण चलाए, तो भीम के पुत्र घटोत्कच ने क्रोध में भरकर अपने शत्रुओं को रोका। घटोत्कच कोई भीम से कम नहीं था, वो भी रथों को यूं उठा लेता था और रथों को यूं घुमाता था। सब योद्धा डरते थे कि जाने कहां पटक देगा। घोड़े सहित रथ को उठा लेना, उनको उल्टा पुल्टा कर देना, ये घटोत्कच के लिए बड़ा साधारण काम था। घटोत्कच का खुद का रथ लोहे का था और उसमें 8 पहिए थे। उसमें बैठकर अश्वत्थामा की तरफ उसने बाण चलाए, अश्वत्थामा स्वयं घबरा गया। यमराज के समान प्रतीत हो रहा था ये घटोत्कच। लेकिन सबसे बड़ी बात थी, रात्रि होने के कारण राक्षसों का बल बहुत बढ़ जाता था, इसलिए घटोत्कच कई प्रकार की माया करता, लेकिन अश्वत्थामा उस माया से विचलित नहीं होता था, अपने बाणों से वो माया को नष्ट कर देता था। माया का नाश हो जाने पर घटोत्कच की क्रोध की सीमा बढ़ जाती थी। भयंकर बाण दिए, मर्मस्थलों पर चोट पहुंचाई, अंत में घटोत्कच का पुत्र अंजन परवा वहां आया। वो अश्वत्थामा से युद्ध करने लगा, अश्वत्थामा ने अंजन परवा को मार डाला। अश्वत्थामा के हाथ से मरे हुए अपने पुत्र की बात देखकर घटोत्कच को बड़ा क्रोध आया और अश्वत्थामा के पास जाकर बोलने लगा, ए द्रोण कुमार, तू द्रोण का बेटा है तो मैं भीम का बेटा हूं, डटे रहना, जो युद्ध में कभी पीछे पैर नहीं हटाते उन पांडवों का पुत्र हूं, उस भीमसेन का पुत्र हूं, राक्षसों का राजा हूं और रावण के समान मेरा बल है, तो इस रणांगण में खड़ा रहे, जीते जी नहीं जाने पाएगा, आज तेरे युद्ध करने का हौसला यहीं समाप्त करता हूं। ला ला के किए हुए अश्वत्थामा की ओर झपटा, खूब बाणों की वर्षा करने लगा घटोत्कच। अश्वत्थामा भी बड़ा वीर था, अश्वत्थामा ने खूब उसके साथ युद्ध किया। उस समय इन दोनों के बाणों की चिंगारियों से ऐसा लगता था मानो बरसात के अंदर जुगनू जगमगाते हों। घटोत्कच अपनी माया फैलाने लगा, युद्ध करता करता एकदम आकाश में छिप गया, फिर एक ऊंचा पर्वत बन गया, ऐसा पर्वत जिसके ऊपर खूब से वृक्ष हैं और उन पर्वतों से अनेक प्रकार के शस्त्रों की वर्षा करने लगा। अश्वत्थामा विचलित नहीं हुआ, उसने वज्रास्त्र का प्रयोग किया, वो बाण का जो ही पर्वत से स्पर्श हुआ वो पर्वत अदृश्य हो गया। फिर अश्वत्थामा के सामने पत्थरों की वर्षा हुई तो वायव्यास्त्र का प्रयोग किया। घटोत्कच देखा ये तो बड़ी विचित्र बात है, इधर राक्षसों को आज्ञा दी कि वीरों, ये द्रोण का बेटा हमारे सामने बड़ी माया दिखाता है और हमारी माया को काटता है, तुम द्रोण के इस पुत्र को मार डालो। अब राक्षस सब मुंह बाए उसकी तरफ आए, अनेक प्रकार का प्रहार किया, अश्वत्थामा में कई प्रकार का प्रयोग किया और अंत में ये सब तितर बितर हो गए। अश्वत्थामा ने सबको भगा दिया, देवता लोग भी अश्वत्थामा की प्रशंसा करने लगे। महाराज सुनिए, धृतराष्ट्र जी, अश्वत्थामा ने राजा कुंती भोज के 10 पुत्रों और हजारों राक्षसों का संहार कर दिया, तब युधिष्ठिर, भीमसेन, धृष्टद्युम्न और सात्यकी ने फिर गहन विचार किया और फिर अपने पक्ष के योद्धाओं को बड़ा उत्साह दिलाते हुए उन्होंने द्रोणाचार्य को घेरना चालू किया। द्रोणाचार्य पर लगातार वर्षा होती गई और द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर का वध करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। घोर अंधकार छा गया, ब्रह्मास्त्र के भय से सब प्राणी थर्रा उठे। उस ब्रह्मास्त्र को प्रकट होते देख युधिष्ठिर ने भी ब्रह्मास्त्र से उसको शांत कर दिया। द्रोणाचार्य की आंखें धर्मराज पर लाल हो गई, उन्होंने वायव्यास्त्र से द्रुपद की सेना का संहार किया। अर्जुन और भीमसेन दोनों ने द्रोणाचार्य का आज खूब मुकाबला किया। अर्जुन ने दक्षिण की ओर से और भीमसेन ने उत्तर की ओर से द्रोण की सेना के ऊपर प्रहार किया। एक तो घोर अंधकार, कुछ सूझता नहीं, सारे दिन से युद्ध कर रहे हैं, सबको नींद आ रही है, सब लोग आराम भी करना चाहते हैं, पर कोई ऐसी बात कहकर के अपनी कमजोरी को प्रकट भी नहीं करना चाहता है। उस समय आचार्य द्रोण और आपके पुत्र ने पांडव योद्धाओं को रोकने की बड़ी कोशिश की, परंतु वे सफल नहीं हुए। दुर्योधन तत्काल कर्ण के पास जाकर कहने लगा, कर्ण तुम ही हमें इस महान युद्ध सागर से बचा सकते हो। ये पांचाल के गए मत्स्य और पांडव महारथियों ने इस समय हमको बड़े संकट में डाल रखा है। कर्ण बोला, भारत तुम धैर्य धारण करो, मैं तुम्हें सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूं, आज युद्ध के अंदर अर्जुन अवश्य मरेगा, मैं अर्जुन को मार करके रहूंगा, मैं तुम्हें प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं, मैं अकेला पांडवों और पांचालों का नाश कर सकता हूं। मित्र तुम घबराओ, क्या ये बात तो सदा तुम कहते आए हो, मेरे समान कोई योद्धा नहीं, मेरे समान कोई योद्धा नहीं, मैं अर्जुन को कुछ समझता नहीं, और अर्जुन देखो हमारी योद्धाओं को मारे जा रहा है। देखो दुर्योधन, हमारी बात को गंभीरता से सुनो, मेरे पास इंद्र की दी हुई एक अमोघ शक्ति है, मैं मौका देख रहा हूं, इस मौके के द्वारा मैं इस अमोघ शक्ति का प्रयोग अर्जुन पर करूंगा, और जिस दिन अर्जुन मर जाएगा फिर उसके बाद चारों भाइयों का तो मारना कोई बड़ी बात नहीं, या तो अधीन हो जाएंगे, या ये भग जाएंगे, और या ये मारे जाएंगे। जब तक ये कर्ण जीवित है दुर्योधन, तुम कोई विषाद मत करो, पांडवों का जीवन मेरी मुट्ठी के अंदर है। कर्ण की बात सुन ली कृपाचार्य ने, पास में थे, वाह खूब कर्ण खूब, बड़ी बहादुरी की बातें बनाना जानते हो, बात बनाने से काम हो गया होता तो ये युद्ध क्यों किया, तुम इनके पास बहुत बड़बड़ कर बातें करते हो लेकिन कभी तुमने पराक्रम दिखाया है, यदि पराक्रम दिखाया होता तो इसका फल भी सामने आ जाता, तुम्हारी कितनी बार पांडवों से मुठभेड़ हुई है रे, किंतु सदाई तुमने उनसे मार खाई है ना कर्ण, याद नहीं है जब गंधर्वों ने तुम्हारे मित्र दुर्योधन को पकड़ लिया था, तुम भी वहीं थे, तुम्हारे पास बड़ी भारी सेना थी, युद्ध करने के लिए आई थी, उस समय गंधर्वों को तुमने भगाया, तो अर्जुन और भीम आए, उन्होंने तुमको वहां उनके बंधन से मुक्त किया था, याद है विराट नगर में सारे कौरव लोग इकट्ठे हुए थे, एक अकेले अर्जुन ने उत्तर के रथ पर बैठकर तुम सबको परास्त किया था, याद है, अकेले अर्जुन का सामना करने की तुम में शक्ति होती तो कर्ण तुम कभी अर्जुन को मार सकते थे, चुपचाप रहो, युद्ध मत करो, या युद्ध करो, डींग मत मारो, युद्ध करो, मत करो नहीं, युद्ध करो, बिना कहीं पराक्रम दिखाया जाए वही सत्पुरुषों का व्रत है, पराक्रम की बातें तो करता है, पराक्रम के समय दुम छिपा करके भग जाता है, वो कोई योद्धा होता है, कारण मनसूबे बांधने में तुम बड़े श्रेष्ठ हो, धनुष चलाने में अर्जुन श्रेष्ठ है, जिन्होंने अपने पराक्रम से भगवान शंकर को संतुष्ट किया है उन अर्जुन को भला तुम्हारे में से कौन मार सकता है। कर्ण नाराज हो गया, कर्ण नाराज होकर कृपाचार्य से कहने लगा, महाराज वर्षा काल के मेघ के समान सूरवीर सदा गरजते रहते हैं, सूरवीरों में यह भी एक सूरवीरता है कि वे अपने मनोबल को बढ़ाए रखते हैं, पृथ्वी में बोए हुए बीज के भांति वे शीघ्र फल देते हैं, गरजना कोई व्यर्थ नहीं है, बाबा जी यदि मैं गरजता हूं तो आपका क्या नुकसान है, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मैंने अर्जुन की निंदा की है, पांडवों की निंदा की है, आपको तो मैंने कुछ नहीं कहा, मेरी गरजना का फल जबकि मैं कृष्ण और सात्विकी के साथ संपूर्ण पांडवों का वध करूंगा तब आपको पता चलेगा, और आप अपने हाथ से दुर्योधन का सारी पृथ्वी के राज्य का राजा बनाने के बाद टीका करेंगे उस समय देखेंगे। कौन बोला? कर्ण। कृपाचार्य बोले, अरे सूत पुत्र, तुम्हारे ये मनसूबे और ये प्रलाप अविश्वसनीय है। तुमने अपने जीवन में सदा कृष्ण को, अर्जुन को, धर्मराज युधिष्ठिर को कोसा है और दुर्योधन को मिथ्या ही इनसे लड़ाने का काम किया है ताकि कर्ण की गर्ज बनी रहे। याद रखना, कर्ण विजय उस पक्ष की होती है जहां युद्ध कुशल श्री कृष्ण हो और अर्जुन हो। यदि देवता, गंधर्व, यक्ष, सर्प, मनुष्य, राक्षस ये सब कोई कवच धारण करके भी युद्ध करने के लिए आए, इन दोनों को नहीं हरा सकते। जानते हो इनमें क्या है? धर्मपुत्र युधिष्ठिर, ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी, जितेंद्री, गुरुजनों का सम्मान करने वाला, देवताओं का सम्मान करने वाला, सदा धर्मपरायण, धैर्यवान, कृतज्ञ, और इनके भाई सदा बड़ों का आदर करने वाले, आदेश में रहने वाले, स्नेह से रहने वाले। तुमने एक युधिष्ठिर के पीछे चारों भाइयों को कष्ट पाते देखा। यदि तुम्हारे जैसे होते तो तुम युद्ध में लड़ने लग गए। एक दूसरे पर तुम लांछन लगाते हो, एक दूसरे को तुम नीचा दिखाते हो। पांडवों ने तो कभी कभी नहीं कहा, हे धर्मराज, आपकी जुआ खेलने से हम क्यों कष्ट पाए। देखा उनको, तुम युधिष्ठिर की महिमा नहीं जानते। कर्ण यदि वो अंदर के क्रोध से एक बार केवल दृष्टि डाल दे तो सारे भूमंडल को भस्म कर सकते हैं, पर ऐसा करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो धर्मात्मा है, इनके बल की सीमा नहीं है। और कृष्ण वो तो एक तमाशा कर रहे हैं, कर्ण मैं युद्ध नहीं करूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और यदि वे शस्त्र उठावे, कवच धारण करके आ जाए, है कोई ऐसा उनके सामने टिक जाए। कर्ण ने कहा, बाबा, पांडवों के विषय में जो कुछ कहा आपकी बात ठीक है, परंतु आपने मेरी अमोघ शक्ति को नहीं पहचाना है। वो अमोघ शक्ति है, उसके द्वारा मैं युद्ध में अर्जुन को मार सकता हूं, और उनके मरने पर सारे भाई पृथ्वी में इधर उधर लुकते छिपते फिरेंगे और ये सारी पृथ्वी दुर्योधन को मिलेगी। आप तो बुढ़े हो, युद्ध करने में समर्थ नहीं हो, बार बार आप पांडवों की महिमा गाकर अपने युद्ध के अकौशल को छिपा रहे हो। पर याद रखो, यदि मेरे विषय में कोई अप्रिय बात आप मुंह से निकालोगे तो कृपाचार्य जी, मैं अपने तलवार से आपकी जीभ काट दूंगा। ये बात सुनते ही अश्वत्थामा हाथ में तलवार लेकर कर्ण की ओर झपटा। दुर्योधन के देखते देखते वो कर्ण के पास गया और कहा, ए नीच, मेरे मामा शूरवीर कृपाचार्य को इस प्रकार मेरे सामने तो बोलता है? ये अर्जुन के गुणगान कर रहे हैं, सच्चा गुणगान है। अर्जुन से द्वेष रखने के कारण से तुम उनके गुणों के अंदर दोष देखते हो। मनुष्य की दृष्टि ऐसी है, जो मनुष्य जिससे द्वेष रखता है उसके गुण नहीं देख सकता, और जो जिसमें राग रखता है वो उसका दोष नहीं देख सकता। तो वह अपनी शूरवीरता का ढींग हांकता है। अरे तुम्हारे सामने जयद्रथ को मारा, तुम कहां गए थे? कौन से बिल में छिप गए थे? तुम्हारे पास क्या शस्त्र नहीं थे? क्या तुम्हारे पास इंद्र वाली अमोघ शक्ति नहीं थी? क्या बात हुई, क्यों नहीं प्रयोग किया? कृष्ण के साथ रहने पर अर्जुन को इंद्रादि देवता भी नहीं हरा सकते। तू है क्या चीज? नराधम, मेरे मामा के लिए जो शब्द कहा है उसके लिए अभी तुझे दंड देता हूं। मैं अपनी तलवार से तेरा सिर अलग करता हूं। कौन बचाने वाला है? दुर्योधन बीच में आया। अश्वत्थामा, ये क्या करते हो? ऐसे करने से हमारे आपस में ही फूट पड़ेगी। ये तलवार लेकर यदि गर्दन काटनी है तो पांडवों की तरफ जाओ। क्यों? दुर्योधन को बोलता है, क्यों ये इस प्रकार से अपमानित करता है? मेरे मामा के, मेरे पिता के चरणों में प्रणाम करने वाली युधिष्ठिर को हम तलवार से मारें, और मेरे मामा का अपमान करने वाले का हम सम्मान करें? इतना ब्राह्मण गिरा हुआ नहीं है। कौन बोला? अश्वत्थामा। कर्ण ने कहा, ए दुर्बुद्धि नीच ब्राह्मण, अपने को बड़ा शूरवीर समझता है, लड़ाका समझता है, दुर्योधन तुम अलग हो जाओ, तुम रोको मत, छोड़ दो इसको, जरा मैं इसे पराक्रम देखना चाहता हूं। मूर्ख सूत पुत्र, तू कहां मेरी बराबरी करेगा रे? तेरे घमंड का नाश अर्जुन ने किया, उसके बाद तो मेरे पास आना। अरे शांत हो जाओ अश्वत्थामा जी, शांत हो जाओ, कारण तुम भी इस प्रकार से अपने वचनों को संयमित करो। अश्वत्थामा ने कहा, यदि वाणी पर संयम होता तो आज ये कुरुक्षेत्र का युद्ध नहीं होता दुर्योधन। अश्वत्थामा ने उसको भी फटकारा। फिर उसके बाद पांडवों का और पांचालों का खूब घोर युद्ध हुआ, खूब धूल उड़ने लगी। अब वहां पर दीपक जगा जगा करके मशाले ले लेकर के युद्ध हो रहा था। एक एक रथ के ऊपर 7 दीपक, आगे पीछे बीच में और दाएं बाएं 7-7 बड़े बड़े दीपक, ये नहीं है दिवाली वाला, बड़े बड़े दीपक और आगे मशाले जिससे खूब प्रकाश होता था। इस प्रकार से युद्ध होने लगा। अर्जुन का और कर्ण का खूब भयंकर युद्ध हुआ। अर्जुन ने कर्ण के बाणों को तत्काल काटना चालू किया, फिर उसका सारथी मर गया, घोड़े वगैरह सब मर गए, वो उछल करके, कौन? कर्ण उछल करके कृपाचार्य के रथ पर जाकर के बैठ गया। कृपाचार्य ने कहा, लड़ मेरी रथ पर आया है, कर इसे दो हाथ। फिर उसके बाद वो कृपाचार्य के रथ से कूद करके भाग गया। कौन? कर्ण। कर्ण को भगता देख करके सारी सेना में खलबली मच गई। दुर्योधन ने सांत्वना दी, अरे अरे कर्ण किसी काम से गया, अभी आ जाता है, तुम लोग श्रेष्ठ क्षत्रिय हो, एक को भगा देखकर तुम भगो मत, तुम तो पांचालों और सोमकों को वश में करो, अरे अर्जुन को मैं रोकता हूं। बड़ी फुर्ती के साथ अर्जुन के सामने आया। कृपाचार्य ने अश्वत्थामा के पास जाकर कहा, अश्वत्थामा ये राजा दुर्योधन क्रोध में है, विवेक शक्ति खो बैठा है, पतंगा जलने के लिए जैसे दीपक में जाता है उसी प्रकार ये सर्वनाश करने के लिए अर्जुन से लड़ना जा रहा है, तू रोक। अरे हम आपस में कैसे भी बोलते हैं जो भी है, लेकिन दुर्योधन को बचाओ, हम लोगों के सामने ही पार्थ से भिड़कर ये अपना प्राण खो देगा तो अपना भी तिरस्कार होगा, उसको हटाओ यहां से। अश्वत्थामा ने कहा, गांधारी नंदन दुर्योधन, मैं तुम्हारा ही तेजी यहां युद्ध करने के लिए हूं, तुम अकेले युद्ध क्यों करते हो? तुम तो राजा हो, तुम अपने बहुत से सैनिकों के साथ युद्ध करो, तुम अर्जुन को जीतने में सक्षम हो, इसमें संदेह नहीं है, परंतु तुम यहां युद्ध करोगे अर्जुन के सामने, फिर हम लोगों के शूरवीरता का क्या होगा? तुम चुपचाप खड़े रहो या तुम दूसरा मोर्चा संभालो, मैं अर्जुन को रोकता हूं। दुर्योधन बोला, अरे ब्राह्मण, तेरा बाप तो पुत्र के भांति पांडवों की रक्षा करता है और तुम पांडवों की तरफ से लापरवाही का बर्ताव करके उनको अपना भाई समझते हो, मैं नहीं जानता हूं तुम पिता पुत्र की क्या राजनीति है, तुम्हारा पराक्रम मंद क्यों हो रहा है, शायद मेरा ही कोई दुर्भाग्य होगा, अथवा तुमको वो सभा याद आ रही है जिस सभा के अंदर द्रौपदी का हमने अपमान किया था। अश्वत्थामन, यदि मेरे पर प्रसन्न हो तो जाओ मेरे दुश्मनों का नाश करो, और यदि मुझे ही युद्ध में झोंकना चाहते हो, मेरी मृत्यु देखना चाहते हो, तो पांडवों के पक्ष में खड़े होकर मेरे तीर लगा दो, मैं तुमको समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम कौन हो। अश्वत्थामा ने कहा, दुर्योधन वीरता दिखाओ, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मेरे पिता को पांडव बहुत प्यारे हैं और मुझे वो सगे भाई बड़े भाई से भी ज्यादा प्यारे हैं। किंतु तुम इस प्रेम को जानते नहीं हो दुर्योधन। तुम्हारे मन में स्वार्थ, तुम्हारे मन में अहंकार, लालच, सारे दोष भरे पड़े हैं, तुम क्या जानो। अरे ये युद्ध का समय है, हमारा प्रेम अपनी जगह है, युद्ध के अंदर बाणों से बात होती है। इस समय तो हम लोग प्राणों का मोह छोड़कर निडर होकर पूरी शक्ति के साथ युद्ध करते हैं, तुम हमारे इस कर्तव्य को समझ नहीं पाओगे। जाओ दूसरे मोर्चे से युद्ध करो। इधर दूसरे मोर्चों से युद्ध होने लगा। धृष्टद्युम्न के कहे हुए, इधर धृष्टद्युम्न है वो जो है द्रोणाचार्य से भिड़ रहा है, अश्वत्थामा वहां पहुंच गया। धृष्टद्युम्न और अश्वत्थामा इनकी आपस में बड़ी कुश्ती हो रही, युद्ध कर रहे हैं, एक दूसरे पर तरह तरह के बाण मारते हैं। इस प्रकार से आज अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न के छक्के छुड़ा दिए और सब लोग अश्वत्थामा की बड़ी प्रशंसा करने लगे। इधर युधिष्ठिर और भीमसेन ने अश्वत्थामा को घेर लिया और दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास आया और फिर द्रोणाचार्य के पास खड़ा होकर भीमसेन और युधिष्ठिर के साथ युद्ध करने लगा। इधर भीमसेन ने त्रिगर्त देश के राजाओं को यमलोक में भेज दिया, मध्य देश, मालव देश के राजा, उन सबका नाश कर दिया और कौरव सेना पर पुनः अर्जुन की मार भारी पड़ने लगी। एक तो अंधेरा, कुछ सूझता नहीं, नींद में लोग व्याकुल, सेना का संहार हो रहा है, कौरव सेना बड़ी भयभीत हो रही है। इधर सात्यकी सोमदत्त के साथ भिड़ गए। सोमदत्त वही भूरिश्रवा का पिता, दोनों का बहुत भयंकर युद्ध हुआ और इस युद्ध के अंदर सोमदत्त सात्यकी के द्वारा मारा गया। इधर फिर सोमदत्त को मरा हुआ देखकर द्रोणाचार्य जी, युधिष्ठिर वगैरह से खूब युद्ध करने लगे, एक दूसरे के ऊपर वे बाणों का प्रहार करने लगे। इधर भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, महाराज मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं, द्रोणाचार्य से युद्ध मत कीजिए, क्योंकि युद्ध में आपको पकड़ने का उद्योग करेंगे, उनके साथ आपका युद्ध करना उचित नहीं समझता हूं, तत्काल अपने मोर्चे को बदल दीजिए, इनका वध धृष्टद्युम्न से होगा, आप गुरु को नहीं मार सकोगे, आप इनको छोड़ दीजिए, जहां राजा दुर्योधन है वहां जाइए, क्योंकि राजा की राजा के साथ लड़ाई अच्छी होती है, एकदम आप अपने रथ को मोड़ दीजिए, आप हाथी घोड़े रथ की सेना लेकर वहां जाइए जहां मेरी सहायता से भीमसेन और अर्जुन कौरवों से युद्ध कर रहे हैं। भगवान की बात सुनकर धर्मराज ने अपना रथ मोड़ दिया। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय पांडवों ने जब हमारी सेना का इस प्रकार से मान मर्दन कर दिया, हमारी सेना का मंथन कर डाला, सैनिकों के तीक्ष्ण बाण यहाँ खूब छाती में लगने लगे, उस समय में मेरे प्रिय पुत्र दुर्योधन कहाँ थे? संजय ने कहा, महाराज आपकी करतूतों से, आपके प्रिय पुत्र दुर्योधन के दुराचार से आपकी कौरव सेना आप बाप पुत्र को अनेक प्रकार का उपालंब देते देते मरती जा रही थी। लोग कहते हैं किसका राज्य, किसका लेना देना, कौन बाप कौन बेटा, हम तो हमारे माँ बाप को, हम हमारे बेटा बेटी को, हम हमारे स्त्रियों को छोड़कर युद्ध में मरते जा रहे हैं और इधर बाप बेटे का प्रेम हम लोगों को कष्ट दे रहा है, संपूर्ण सेना आपकी नष्ट होती चली गई। और सबसे बड़ा आश्चर्य है कि जो मशाल ले लेकर चल रहे थे उनके द्वारा कौरव ये पांडव बहुत सावधान थे, उस युद्ध को देखने के लिए देवता गंधर्व यक्ष सिद्ध अप्सराएं वहां पहुंची और जो युद्ध में मरे हुए प्राणी थे उन सबको स्वर्ग की ओर चढ़ा रहे थे, मानो स्वर्ग का रास्ता खोल दिया है। इस प्रकार स्वर्ग के वासी वहां आ गए तो रणभूमि भयावन नहीं लिखी, वो देवलोक के समान दिखाई देने लगी। संजय कहते हैं, इधर दीपकों के प्रकाश से, मशालों के प्रकाश से सेना आगे बढ़ती जा रही थी। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय जब अर्जुन को क्रोध में देखा गया उस समय दुर्योधन की सेना में वो घुस गया, उसके बाद मेरे प्रिय पुत्र दुर्योधन कहाँ चले गए थे? मेरा प्रिय पुत्र दुर्योधन अर्जुन के सामने तो नहीं आया ना? आचार्य द्रोण जब युद्ध कर रहे थे उस समय अर्जुन ने उनको छोड़ करके दूसरा मोर्चा क्यों लिया? महाराज वो रात्रि भगवान कृष्ण के समस्त युद्ध कर रही थी। पांडव लोग एक अनुशासित सैनिक के समान युद्ध करते थे, सारी सेना का संचालन कृष्ण के साथ था, इसलिए उन्होंने पहले ही कह दिया कि देखो वीरों, आचार्य द्रोण बड़ी सावधानी से युद्ध कर रहे हैं, पांडव लोगों को, सेना वालों को सावधान रहकर आचार्य से युद्ध करना चाहिए। इधर आपके प्रिय पुत्र दुर्योधन ने कहा कि धृष्टद्युम्न से द्रोण की रक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार से बहुत भयंकर वहां पर युद्ध हुआ, कई बड़े बड़े योद्धा मारे गए। दुर्योधन भीम के डर से पहले भाग करके नंदक के रथ पर चढ़ गया और फिर भीमसेन ने कौरव सेना का संहार करते हुए तिरस्कार किया, ये तुम्हारा राजा मेरे सामने भगभग करके ही रथों पर चढ़ता है, कभी कहां जाता है, फिर सामने आता है, फिर भगता है, क्या है ये? ऐसे करके फटकारा। पर आपका प्रिय पुत्र इतना निर्लज्ज कि वो अपने प्राणों को छिपाने के लिए इधर उधर भागने लग गया। इतने में ही सहदेव का और कर्ण का आपस में खूब युद्ध हुआ। उस युद्ध के अंदर कर्ण ने सहदेव के घोड़ा, सैनिक, सारथी और रथ सबको तितर बितर कर दिया, और जब उसके पास कोई शस्त्र नहीं रहा तो थोड़ा आगे बढ़कर सहदेव के पास आया कर्ण। कहने लगा, यही चंचल, आज से तू अपने से बड़े रथियों के साथ युद्ध मत करना, तुम छोटे बच्चे हो, हम लोगों के साथ युद्ध करने की तुम्हारी सूरत ही नहीं है, तुम तो जाओ अपने घर में बैठे रहो, यहां हमारे सामने क्यों युद्ध करते हो? ये ताना मारा और कर्ण चला गया। महाराज उस समय सहदेव मृत्यु के निकट पहुंच चुका था, यदि कर्ण चाहता उस शस्त्रहीन सामने खड़े हुए सहदेव को मार सकता था, किंतु अपनी मां को ये भी वचन याद आया। उसने कहा कि मैं अर्जुन के अलावा किसी का वध नहीं करूंगा। एक बार कर्ण के हृदय में सहदेव के प्रति स्नेह उमड़ा, पर उसने सहदेव के सामने व्यक्त नहीं किया। आंखें छलछला गईं कर्ण की और अपना रथ मोड़ करके अपने आंसुओं को पूंछ करके फिर वो पांडु सेना में घुस गया। इधर द्रोण का मुकाबला करने के लिए राजा विराट और उसकी सेना थी, सबका खूब अच्छा संघर्ष हुआ। इधर कर्ण का पुत्र वृषसेन था, उसका द्रुपद के साथ में युद्ध हुआ। इधर नकुल, वो भी पांडवों की सेना, कौरवों की सेना का संहार कर रहा था, पांडवों की सेना का बड़ा मनोबल बढ़ा रहा था। इधर कृपाचार्य और शिखंडी लड़ रहे थे। देखो महाराज, यहां रात्रि के समय में कोई युद्ध का नियम नहीं था, कोई मर्यादा नहीं थी, जितने जितने नियम बनाए थे वो सब दिन के युद्ध में थे, रात्रि के युद्ध में बिल्कुल नहीं थे। खूब घमासान युद्ध होने लगा। अब थोड़ा ध्यान से, महाराज संजय कहते हैं, महाराज धृतराष्ट्र जी, जब दुर्योधन ने देखा कि पांडव मेरी सेना का विध्वंस कर रहे हैं, हमारी सेना पल पल में भागने के लिए उतावली हो रही है, तो बड़ा क्रोध करने लगा और सहसा द्रोणाचार्य और कर्ण के पास पहुंचा और क्रोध में भरकर कहने लगा, हमारी सेना को पांडवों की सेना मार रही है। आप दोनों जीतने में समर्थ हैं, पर असमर्थ के भांति तमाशा देखते हैं। यदि आप मुझे त्याग देना चाहते हो तो वैसा बताओ ना। आप अपना पराक्रम नहीं दिखाते और हमारी सेना जो तितर बितर हो गई है उसको आप संभालते नहीं। आप आपस में क्या मंत्रणा कर रहे हैं? कर्ण और द्रोणाचार्य दोनों को वो इस प्रकार कड़वी बात मालूम पड़ा। द्रोणाचार्य ने फिर देखा, इस मूर्ख से कौन बात करे, इसको हर बात का जवाब देना मेरे सम्मान के खिलाफ है, ऐसा समझकर कोई जवाब नहीं दिया। युद्ध में लग गए। युद्ध में इसमें बड़ी चीत्कार हो रही थी और वो सब इतने जोर से इस प्रकार युद्ध करने लगे कि पांडवों की सेना अब हारने लगी। ये सब देखकर भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, द्रोण और कर्ण ने इस समय जो अपने कौशल के अंदर तेजी लाई है वे सात्यकी को और सारे पांचाल योद्धाओं को मार देंगे। तुम्हारे महारथियों के पैर उखड़ रहे हैं, अब सेना रुकने से भी नहीं रुकती है। तो कहा अर्जुन से, इस प्रकार कहने पर भगवान कृष्ण और अर्जुन ने सैनिकों से कहा, थोड़ा अपने मन से भय निकालो, कितनी बार कौरवों को हमने परास्त किया है, अब हम द्रोण और कर्ण को अपने शस्त्रों से नियंत्रित कर लेंगे, आप भगो मत। कृष्ण और अर्जुन इस प्रकार बातें करने वाले थे, कर रहे थे, भीमसेन सेना के साथ लौटा, द्रोणाचार्य से भिड़ गया। श्री कृष्ण द्रोण और कर्ण के पास जाकर सेना के अग्रभाग में खड़े हो गए। युधिष्ठिर की बड़ी भारी सेना थी, वो वहां उपस्थित हो गई। घमासान युद्ध होने लगा। कर्ण ने धृष्टद्युम्न की छाती में कई प्रकार के बाण लगाए। इधर धृष्टद्युम्न ने उसके साथ युद्ध किया। युधिष्ठिर कहने लगे, अर्जुन, तुम इस युद्ध के अंदर अब हमारी सहायता करो, हमारी सैनिकों का आर्तनाद मेरे से सुना नहीं जाता है, ये कर्ण के बाणों से पीड़ित हो रहे हैं, तुम कर्ण का क्यों नहीं वध कर देते हो? ये सुनकर अर्जुन ने कृष्ण से कहा, मधुसूदन, महाराज युधिष्ठिर कर्ण के पराक्रम को देखकर भयभीत हो रहे हैं, एक तरफ तो वो और एक तरफ द्रोणाचार्य दोनों हमारी सेना को आहत कर रहे हैं, कर्ण का विशेष त्रास छाया हुआ है, हमारी सेना भग रही है, उन्हें कहीं उचित स्थान नहीं मिल रहा है, मैं देखता हूं कर्ण भागते हुए योद्धाओं को भी मार रहा है, अतः आप जहां कर्ण है वहां हमारे रथ को ले चलिए। कृष्ण कहने लगे, अर्जुन शांत रहो, तुमको कभी दो पशुओं का युद्ध याद आता है? दो सांड लड़ते हो, एक सांड थोड़ा पीछे जाता है तो वो पूरी शक्ति के साथ, वेग के साथ दूसरे के साथ युद्ध करता है। इस समय तुम कर्ण के पास मत जाओ, इस समय हमारा एक परम वीर राक्षस घटोत्कच है, उस घटोत्कच को लेकर के युद्ध करने दो। आज का युद्ध घटोत्कच का और कर्ण का होना चाहिए, तुम यहां बिल्कुल मत रहो। अर्जुन, मैं तुम्हें अपने हृदय की बात बताता हूं, आज तक मैंने तुमको नहीं बताई है, क्योंकि ऐसी बात मौके पर बताने से ही लाभकारी होती है। इंद्र की दी हुई एक देदीप्यमान अमोघ शक्ति है और यह उस अमोघ शक्ति का प्रयोग तुम्हारे पर करना चाहता है, और यदि तुम्हारे पर वो शक्ति का प्रयोग हो गया तो फिर ये हम लोग यहां व्यर्थ में जिएंगे, इसलिए अर्जुन धैर्य से काम लो, महाबली घटोत्कच को आगे करो, इसके पास दिव्य राक्षस असुर और अनेक प्रकार के शस्त्र भी हैं, वह अवश्य ही कर्ण पर विजयी हो सकता है। कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन ने घटोत्कच को बुलाया। घटोत्कच ने आकर अर्जुन को प्रणाम किया, कृष्ण को प्रणाम किया, कृष्ण की ओर देखते हुए बोला, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूं, आज्ञा दीजिए, कौन सा काम करूं? भगवान ने हंसकर कहा, बेटा घटोत्कच, मैं जो कहता हूं उसको बड़े प्रेम से सुनो, आज तुम्हारे पराक्रम के दिखाने का बड़ा विलक्षण समय आया है। ये काम कोई तुम्हारे बिना दूसरा कर नहीं सकता है। तुम्हारे पास कई प्रकार के शस्त्र हैं, राक्षसी माया है। हे हिडम्बा के प्यारे पुत्र, देखते हो ना, जैसे चरवाहा गऊं को हांकता रहता है, ऐसे आज कर्ण सारे पांडव सेना को खदेड़ रहा है, प्रधान प्रधान क्षत्रियों को मार रहा है। उसके बाणों से पीड़ित होकर हमारे सैनिक कहीं ठहर नहीं पाते हैं, मैदान भाग जाते हैं। आज हमारे आन महान शान का प्रश्न है। तुम्हारे पास असीम बल है, जाओ और इस असीम बल के द्वारा कर्ण को मारो। फिर धृष्टद्युम्न आदि वीर जो द्रोण का भी वध कर डालेंगे, उसके बाद हमारा विजय होना बड़ा सुगम हो जाएगा। तुम जाकर के कर्ण को मारो। अर्जुन ने भी कहा, बेटा कृष्ण की बातों को ध्यान से सुनना। मैं कृष्ण की एक एक बात को बड़े आदर के साथ अपने हृदय में पोता रहता हूं। मैं तुमको, सात्यकी को, भैया भीमसेन को अपनी सेना का प्रधान से प्रधान वीर मानता हूं। ये रात का समय है, हम लोगों के पास इतना बल नहीं है कि हम इतना युद्ध कर सके। तुम कर्ण के साथ द्वैरथ युद्ध करो। महारथी सात्यकी पीछे से तुम्हारी रक्षा करेंगे। सात्यकी की सहायता से तुम शूरवीर कर्ण को मार डालोगे। गटोत्कच बोला, पिताश्री, मैं अकेला ही बहुत हूं। कर्ण के लिए, द्रोण के लिए, सब क्षत्रियों के लिए आप कोई चिंता मत करो। वही सूतपुत्र कर्ण, भगवान ने आंख में आंख डाली गया। हाँ, सूतपुत्र गाना तो सूत, हाँ सूतपुत्र कर्ण, उसके साथ तो युद्ध करूंगा। और आज ऐसा युद्ध होगा कि उसकी चर्चा जब तक ये धरती रहेगी तब तक लोग करते रहेंगे। आज मैं राक्षस धर्म का आश्रय लेकर संपूर्ण कौरव सेना का संहार करूंगा, किसी को जीतने नहीं दूंगा। भगवान ने शाबाश, बहुत अच्छा, उसको विदा किया। वो कर्ण की ओर बढ़ा। कर्ण ने कहा, अच्छा आओ आओ घटोत्कच, अब पांडवों के पास बचाई कौन है? पांडवों का धर्म तो समाप्त हो गया, अब ये राक्षस धर्म पर उतरी आए। आओ घटोत्कच आओ। दुर्योधन ने देखा घटोत्कच आ गया कर्ण का वध करने के लिए, तो दुशासन से कहा, रे दुशासन, भीमसेन के साथ तो अपना कई बार युद्ध हुआ है, भीमसेन का बल तो अपना परखा हुआ है, ये तो भीमसेन से भी बड़ा है, आकृति भी बड़ी भयावह है। ये कर्ण की तरफ बढ़ करके किसी प्रकार कर्ण को युद्ध के अंदर रोके, उससे पहले तुम जाकर रोको। दुर्योधन ये कह ही रहा था कि वहां जटासुर का बेटा अलम्बुश आया। क्या आप घटोत्कच से डरते हो? वो राक्षस है तो क्या हुआ? मैं भी असुर का बेटा हूं। मेरे पिता का नाम जटासुर था, राक्षसों के नेता थे, इन पांडवों ने उनको मार दिया, उसका बदला लेने के लिए तुम्हारी सेना में आया हूं। दुर्योधन ने कहा, शाबाश, बहुत अच्छा, ये तो हम चाहते थे, राक्षस से राक्षस टकराए। अलम्बुश और घटोत्कच दोनों आपस में खूब धक्का मुक्की, शस्त्र सब किए। अब क्या बताए, अंत में घटोत्कच ने देखा ऐसे तो मानता नहीं है, शस्त्र रख करके दौड़ करके उसके पास गया और उसके दोनों पैर और दोनों छाती पकड़े ऊपर लिया, खूब देर तक उसको घुमाया, उसको ऊपर घुमा करके जोर से पृथ्वी पर पटक दिया और वो उठने लगा। उससे पहले तलवार से उसका सिर काट दिया। खून से भरे हुए उस मस्तक को लिए घटोत्कच दुर्योधन के पास गया और वो सिर लेकर कहा, ये लो तुम्हारे राक्षस का सिर, यही तेरा भाई, यही तेरा सहायक, यही तेरा, मैंने इसको मार दिया, देख लिया ना मेरा पराक्रम, तुझे आना, तू ही आ जा सामने। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, आधी रात के समय जब कर्ण घटोत्कच का सामना हुआ और घटोत्कच ने ऐसा राक्षस रूप बनाया, अलम्बुश का वध कर दिया, फिर कर्ण के साथ कैसे युद्ध हुआ होगा? और फिर मेरे पुत्र ने उसको क्या जवाब दिया होगा। संजय ने कहा, महाराज उसका वो रूप देखकर आपका पुत्र तो थर थर कांपने लग गया और वो चला गया। घटोत्कच का कैसा रूप था संजय? घटोत्कच उसका मुंह बहुत चौड़ा और ये जो मुख का छिद्र है ये इतना लंबा था कि यहां से लेकर कान तक लंबा हुआ, इतना लंबा मुंह, पता ही नहीं चलता था कि कान के और इसके बीच में कोई दूसरी भी है, कपोल है भी कि नहीं, कान फूटी जैसे है। और दाढ़े बड़ी विकराल, जीभ थी एकदम तांबे की तरह लाल, भौहें थी बड़ी बड़ी, नाक थी मोटी, शरीर का रंग था काला, कंठ था लाल, देह था पहाड़ जैसा, भुजाएं थी बड़ी लंबी लंबी, नदियों के ऊपर पुल होता है इतनी, मस्तक का घेरा बहुत बड़ा था, आकृति बड़ी बेडौल, उसको देखते ही आदमी कांप जाए, पेट उसका बहुत पतला, भुजाओं में भुजबंद आदि आभूषण थे, मस्तक पर सोने का चकमकाता हुआ कुंडल था, ए मुकुट था, कानों में कुंडल थे, गले में सोने की माला थी और उसने कांसे का बना चमचमाता हुआ कवच भी पहन रखा था। उसका रथ भी बड़ा विचित्र था। ऐसा रथ लेकर घटोत्कच आया और उस रात्रि के समय में कर्ण के साथ जा भिड़ा, क्योंकि कृष्ण और अर्जुन ने उसको कर्ण के लिए ही कहा था। रात्रि के समय में सब लोगों को ऐसा लग रहा था कि मानो हम एक बरस से लड़ाई कर रहे हैं, कभी कर्ण घटोत्कच को और कभी घटोत्कच कर्ण को, आपस में एक दूसरे को बीनते चले जा रहे हैं। बीच बीच में जब घटोत्कच अपनी विशेष शूरवीरता दिखाता, माया दिखाता, तो कर्ण इधर उधर छिप जाता था, बड़ी जोर से बोलता, ए सूत पुत्र खड़ा रहे, अब तू मुझसे जीवित बचकर नहीं जा सकता, आज इस सम्रांगण में मैं तेरा युद्ध का शौक पूरा ही करूंगा। कर्ण भी घबरा जाता था। कर्ण जब बाण छोड़ता तो घटोत्कच अदृश्य हो जाता था। कभी घटोत्कच अनेक रूप बनाता था, कोई किसी शस्त्र का स्पर्श नहीं होता, स्पर्श होती उसकी माया खत्म हो जाती, अनेक प्रकार की माया करते करते। भीमसेन उस समय अलायुद्ध के साथ में युद्ध कर रहा था, तो कर घटोत्कच भी वहां पहुंच गया और अलायुद्ध का तो वध कर दिया। अलायुद्ध का वध करने के बाद फिर घटोत्कच बड़ा प्रसन्न होकर के फिर कर्ण के साथ में युद्ध करने लगा। कर्ण के सारथी घोड़े सब नष्ट हो गए, कर्ण के सामने किसी तरह का बचाव नहीं देखा, तो वे योद्धा कर्ण के सामने आम घटोत्कच की सेना कर्ण के सामने नष्ट हो गई तो युधिष्ठिर की सेना में चली गई। बचाओ, ये कर्ण बड़ा पराक्रम दिखाता है, ये घटोत्कच के साथ मोर्चा बंद करके हमको मारता है। घटोत्कच ने ललकारते हुए कहा, हमारे मोर्चे को छोड़कर दूसरे मोर्चे पर क्यों लड़ते हो कायर कर्ण, हमसे लड़ो। तब फिर वहां पर आपस में खूब जो है युद्ध होने लगा, बिजलियां चमकने लगी, घोड़ों के मर जाने पर कर्ण अपने रथ से कूद पड़ा, मन में सोचने लगा, इस समय कौरव युद्ध से भाग रहे हैं और राक्षसी माया उसके दिव्य अस्त्रों का नाश कर रही है, कर्ण क्या करे। घबराया तो नहीं, पर कर्तव्य पर विचार करने लगा। इसी समय भयंकर माया का प्रभाव देखकर कौरवों ने कर्ण से कहा, हे कर्ण, इसका जल्दी वध करो, हम सब इससे डरे हुए हैं, भीमसेन और अर्जुन तो हमारा कुछ नहीं कर सकेंगे, यह एक अर्धविक्षिप्त पागल राक्षस, ये चलता किधर का किधर ही और कुछ का कुछ कर बैठेगा, पता नहीं, इसका नाश करो। कर्ण ने कहा, कैसे नाश करूं, मैंने जो इंद्र की दी शक्ति है वो शक्ति मैंने अर्जुन कह रही, अर्जुन को छोड़ो, अर्जुन इतने दिनों के युद्ध में हमारे सैनिकों को धीरे धीरे तो मारा है, ये तो ऐसी माया करता है, अर्जुन ऐसी माया तो नहीं करता, जल्दी मारो इसको, वो शक्ति तो इसके ऊपर लगा दो, अर्जुन के साथ हम सब युद्ध करेंगे, इंद्र की देवी शक्ति से इस भयंकर राक्षस का संहार कर डालो। कारण सभी कौरव इंद्र के समान बलवान हैं, वे अर्जुन से युद्ध करने में समर्थ हैं। अर्जुन जिन अस्त्रों को जानता है उसके गुरु तो द्रोणाचार्य यहां विराजमान है। रात्रि का समय था, कर्ण ने फिर कहा, देखो आप लोग फिर विचार कर लो, यदि शक्ति का आज मैं प्रयोग कर दूंगा तो फिर पांडवों का बल बढ़ जाएगा। कहा कि किसी प्रकार से नहीं बढ़ेगा, तुम इस शक्ति का प्रयोग करो, हमारी सारी सेना आज नष्ट हो जाएगी, फिर हम किसके लिए युद्ध करेंगे। तब कर्ण ने इंद्र की दी हुई शक्ति थी, उस वैजयंती नाम की शक्ति को अपने हाथ में याद करके और इंद्र को याद करके फिर उस शक्ति को ठीक निशाने से, जिसको उसने कितने वर्षों से कितने प्रयास से अर्जुन के मारने के लिए सुरक्षित रखा था, उसका मन नहीं कर रहा था, लेकिन विवश होकर वो शक्ति उसने घटोत्कच के ऊपर फेंक दी। जो ही उसके हाथ से उस शक्ति निकली, भगवान अपने रथ में बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे, और वो शक्ति जाकर रात्रि में ऐसी विशाल शक्ति, प्रकाशमान शक्ति, सारी राक्षसी माया का भस्म करती हुई जाते जाते घटोत्कच के छाती में लगी, छाती को विदीर्ण कर दिया, और उसके बाद वो शक्ति आकाश मंडल में समा गई, और घटोत्कच भैरवनाद करता हुआ अपने प्यारे प्राणों से हाथ धो बैठा। मरते मरते उसने अपने शरीर को इतना विशाल बनाया कि मैं कई योद्धाओं को यूं ही मार दूं। उसके शरीर के नीचे कई हाथी घोड़े रथ योद्धा कुचल करके मर गए। उसकी देह के नीचे एक अक्षौहिणी सेना दबकर मर गई। इस प्रकार मरते मरते भी उसने पांडवों का हित साधन किया, माया नष्ट हो गई, राक्षस मारा गया, कौरव योद्धा हर्षनाद करने लगे, शंख भेरी ढोल नगारे बजाने लगे, कर्ण की प्रशंसा करने लगे। दुर्योधन उछल करके आया और कर्ण को अपनी छाती से लगाया, वाह कर्ण, आज तुमने सारे कौरवों को बचा लिया, आज तुमने हमारी अपनी मित्रता करके दिखाई, आओ मेरे रथ में बैठो, मैं तुमको ले चलता हूँ। इधर कौरव हर्ष मना रहे थे, इधर पांडव शोक मग्न हो गए, सबकी आंखों से आंसू बह रहा था। किंतु समझ गए ना, किंतु वसुदेव नंदन श्री कृष्ण बहुत खुश थे, आनंद में डूब रहे थे। बड़े आनंद की बात, आज उन्होंने उस युद्ध भूमि में बड़े जोर से पांचजन्य शंख बजाया, हर्ष में झूम झूम कर नाचने लगे, अर्जुन को गले लगाया, पीठ ठोकी और बारंबार गर्जना की। इतना प्रसन्न जान करके अर्जुन बोले, मधुसूदन आपकी कुछ बातें समझ में नहीं आती हैं, हमारा तो पुत्र मारा गया और आज आपको बेमुंह के इतनी खुशी हो रही है, घटोत्कच के मारे जाने से हमारे लिए कितना शोक उपस्थित हुआ है, सारी सेना रो रही है, हमारे भाई रो रहे हैं, हम सब घबरा रहे हैं, और आप इतने प्रसन्न, ऐसे प्रसन्न तो आप इस युद्ध में कभी दिखाई नहीं दिए, क्या बात है। कोई छोटा मोटा कारण नहीं हो सकता जनार्दन, यदि कोई छिपाने लायक बात न हो तो मुझे अवश्य बताओ, क्योंकि मेरा धैर्य छूट रहा है। भगवान कृष्ण खूब प्रसन्न होकर बोले, धनंजय, मेरे लिए सारे युद्ध के अंदर आज ही विजय का दिवस हुआ है, तुम कारण सुनना चाहते हो तो सुनो। तुम जानते हो कर्ण ने घटोत्कच को मारा है, पर मैं ये कहता हूं कि इंद्र की दी हुई शक्ति को निष्फल करके एक प्रकार से घटोत्कच ने ही कर्ण को मार डाला है। अब तुम कर्ण को मरा हुआ समझो। संसार में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं जो कर्ण के हाथ में शक्ति रहने पर उसके सामने ठहर सकता, और यदि उसके पास कवच और कुंडल होते तो फिर तो कोई त्रिलोकी में उसको जीतने वाला नहीं। उस अवस्था में इंद्र कुबेर भी कुछ नहीं, हम और तुम सुदर्शन चक्र घुमाते रहो और गांडीव धनुष लेकर बाण छोड़ते रहो, उसको जीत नहीं सकते थे। तुम्हारा हित करने के लिए इंद्र ने छल पूर्वक उसका कुंडल और कवच छीन लिया था। उनके बदले में इंद्र ने उसको अमोघ शक्ति दी थी। तब से वह सदा तुमको मरा हुआ मानता था और मुझे भी बराबर डर लगा रहता था। आज यद्यपि उसकी ये सारी चीजें नहीं रही तो अभी तुम्हारे सिवा दूसरे किसी से वो नहीं मारा जा सकता। कर्ण ब्राह्मणों का भक्त है, सत्यवादी है, यशस्वी है, व्रतधारी है, शत्रुओं पर दया भी करने वाला है, वो धर्म को निभाने वाला है। संपूर्ण देवता चारों ओर से कर्ण पर बाणों की वर्षा करें तो, और दैत्य लोग उसके ऊपर मांस और खून उछाले तो उसको जीत नहीं सकते। कवच कुंडल और इंद्र की दी हुई शक्ति से वंचित हो जाने के कारण आज कर्ण सामान्य सा योद्धा हो गया है, तो भी उसे मारने का एक उपाय है। ध्यान रखना, जब उसकी कोई कमजोरी दिखाई देगी, वो असावधान हो जाएगा, उसका रथ का पहिया फंस जाएगा, संकट में पड़ जाए, उस समय मैं तुमको संकेत कर दूंगा, बड़ी सावधानी से उसको मारूंगा। तुम्हारे हित के लिए मैंने जरासंध को, शिशुपाल को, इनको पहले ही मरवा डाला है। कंस आदि तो और ही पहले मार डाले गए। बड़े बड़े राक्षस मेरी ब्रजलीला के अंदर भी मारे गए, वो इसीलिए कि आज के दिन ये राक्षस जीवित नहीं होने चाहिए। यदि होते तो वे आज इस युद्ध के अंदर हमको जीतने नहीं देते, सब इकट्ठे हो जाते। हिडम्बासुर, किरमीर, बकासुर, अलायुध, सब राक्षसों को मैंने मरवाया है। जरासंध और शिशुपाल यदि पहले नहीं मारे गए होते तो इस समय बड़े भयंकर सिद्ध होते। दुर्योधन अपनी सहायता के लिए इनके सामने गिड़गिड़ाता, और मेरे साथ शत्रुता रखने के कारण ये अवश्य ही इस समय दुर्योधन का पक्ष लेते और मेरा बैर निकालते। दुर्योधन का सहारा लेकर सारी पृथ्वी को जीत लेते, पहले ही नष्ट कर दिया। एक बात और है, तुम्हें पता नहीं है, जरासंध के साथ युद्ध हो रहा था, बलदेव जी ने जरासंध का तिरस्कार किया। उस समय जरासंध ने हम लोगों को मारने के लिए एक सर्वसंहारिणी गदा ली, गदा को हमारे पर फेंका, और भैया बलराम जी ने उसको नाश करने के लिए स्थूनाकर नामक अस्त्र का प्रयोग किया। उस अस्त्र के वेग से कटी हुई वो गदा जब जमीन पर पड़ी तो जमीन में बहुत बड़ा छिद्र हो गया, सारे पर्वत हिल गए। जिस स्थान पर गदा गिरी वहां जरा नामक एक भयंकर राक्षसी रहती थी, वो राक्षसी उस गदा के आघात से मारी गई और वो पुत्र भी मारा गया। वह अपने पुत्र और बांधवों सहित मारी गई। जरासंध तो अलग अलग दो टुकड़ों के रूप में पैदा हुआ था ना, उन टुकड़ों के कारण से ही उस टुकड़ों को जोड़ने वाली जरा थी, वो जरा के कारण से इसका नाम जरासंध था। ये जरासंध कोई जरा का पुत्र नहीं था। इसके दो ही प्रधान सहारे गदा और जरा, वो हो गया। और तुम्हारा हित करने के लिए मैंने एकलव्य का अंगूठा अलग करवा दिया था। चेदिराज शिशुपाल को तुम्हारे सामने मैंने मारा था, उसे भी देवता और असुर संग्राम में नहीं जीत सकते थे। शिशुपाल तो हमसे बहुत पुराना परिचित है, ये नहीं बताया कि जय और विजयी है। हिडम्बासुर, बकासुर, किरमीर, ये रावण के समान बलवान थे। एक रावण ने कितना पराक्रम किया, यदि ये सब रहते तो आप इनको जीत नहीं सकते थे। आज कर्ण के द्वारा शक्ति का प्रहार कराकर घटोत्कच का काम पूरा हो गया। इस समर में घटोत्कच को कोई मार नहीं सकता था, और यदि आज कोई घटोत्कच को नहीं मारता तो मैं इस घटोत्कच को मारता, क्योंकि घटोत्कच ब्राह्मणों का द्वेषी था, पापात्मा था, धर्म का लोप करने वाला था। इसलिए मैं चाहता था एक तरफ कर्ण इसको मारे घटोत्कच को, क्योंकि घटोत्कच भी तो पापी था, दूसरी तरफ कर्ण की शक्ति भी व्यर्थ हो जाए। अब मैं तुम्हें कर्ण के नाश के विषय में आगे बताऊंगा, जिससे तुम कर्ण को और भीमसेन दुर्योधन को कैसे मार सकेंगे। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय यदि कर्ण की शक्ति एक ही वीर का वध करने के लिए निष्फल होने वाली थी तो उस कर्ण ने अर्जुन के ऊपर पहले ही प्रहार क्यों नहीं कर दिया? अर्जुन के मारे जाने से आज ये पांडव अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। कि कहो अर्जुन सूत पुत्र से लड़ने नहीं आए, ये बात भी नहीं है, खूब दोनों का युद्ध भी हुआ है, सामने भी आए हैं, कर्ण को ये मालूम भी है कि अर्जुन ने मेरे लिए प्रतिज्ञा कर ली है, फिर भी उसने अपना शस्त्र क्यों नहीं छोड़ा? बहुत अच्छा प्रश्न है धृतराष्ट्र का। संजय कहते हैं, महाराज क्या बताएं, भगवान श्री कृष्ण की बुद्धि हम लोगों से बड़ी विलक्षण है। वे जानते थे कि कर्ण अपनी शक्ति से अर्जुन को मारना चाहता है, इसलिए उन्होंने इस युद्ध के अंदर घटोत्कच और कर्ण को आपस में लड़ाया और ऐसा लड़ाया कि कर्ण को विवश होना पड़ा और उस शक्ति का प्रयोग करना पड़ा। कर्ण की अमोघ शक्ति से उन्होंने ही अर्जुन की रक्षा की है, नहीं तो किसी प्रकार से अर्जुन की रक्षा नहीं होती। धृतराष्ट्र पूछते, यही तो मैं पूछता हूं, कर्ण भी तो बड़ा बुद्धिमान था, उसने स्वयं ही अर्जुन पर अब तक उस शक्ति का प्रयोग क्यों नहीं किया? संजय तुम तो बड़े समझदार हो, तुमने ही कर्ण को ये बात क्यों नहीं उस समय सुझा दी कि कर्ण अर्जुन के ऊपर प्रहार करे? संजय ने कहा, महाराज मेरी बात को ध्यान से सुनिए, हम लोग प्रतिदिन रात्रि में बैठ करके विचार करते थे, दुर्योधन, शकुनी, कर्ण, दुशासन, मैं भी वहां, मैं तो उनके बुलाने पर चला जाता था। हम सब लोग बैठे कर्ण से प्रार्थना करते कि भाई कल के युद्ध में तुम सारी सेना को छोड़कर अर्जुन के सामने ही जाना और अर्जुन को मार डालना, फिर हम लोग पांडवों और पांचालों को अपने आप वश में कर लेंगे, तुम्हारा निर्णय केवल दो पर होना चाहिए, अर्जुन या कृष्ण। यदि अर्जुन कृष्ण के पीछे बैठे रहने के कारण किसी प्रकार बच जाए तो इस कृष्ण को तुम जरूर मार डालना, क्योंकि ये पांडवों के सबसे बड़े बल हैं। हम तो कहते हैं कृष्ण के मर जाने पर पांडु सब मर गए, अर्जुन के पास भी बल नहीं। राजन यदि कर्ण कृष्ण को मार डालता तो निस्संदेह आज सारी पृथ्वी उसके वश में होती, उसने भी उन पर शक्ति प्रहार का विचार किया था। परंतु क्या धृतराष्ट्र के, परंतु क्या संजय, क्या बात हुई? परंतु जब वो रथ लेकर कृष्ण के सामने जाते थे, कृष्ण अपनी ऐसी मोहनी माया डाल देते थे, ऐसा अपना स्वरूप दिखाते थे, ऐसी छोटी छोटी अंगुलियां, उनके हाथ में घोड़े की डोरी, गोल उनका मुख, सुंदर उनके आंखें और ऐसी होठों पर प्रेम भरी मुस्कान, वो उनकी तरफ एक टक नजर डालकर देखता रहता और सोचता कि ओहो ये कृष्ण कितने सुंदर हैं, इनकी आंखें, इनके केश, इनका मुकुट और इनका बोलने का लहजा, इनके काम करने का लहजा, एक एक चीज उनको आकर्षित करती। तो कर्ण अपनी शक्ति को भूल गया और कृष्ण का स्मरण करने लगा। और जब हम शाम को मिलते तो कहते कि क्या करूं, मैं वहां गया तो मैं शक्ति को भूल गया। ऐसे करके अर्जुन पर और कृष्ण पर वो प्रहार नहीं हुआ। तो मैं आपको बता रहा था कि घटोत्कच के मारे जाने पर सात्यकी ने भी भगवान कृष्ण से यही प्रश्न किया था, हे भगवान, जब कर्ण ने अमोक शक्ति अर्जुन पर छोड़ने का निश्चय किया तो क्यों नहीं छोड़ी। तो भगवान ने अपने मुख से कहा, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, जयद्रथ ये सब मिलकर यही सलाह करते थे कि कर्ण, तुम अर्जुन के सिवा दूसरे किसी पर शक्ति का प्रयोग न करना, उनके मारे जाने पर पांडव और श्रींजय स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। युयुधान कर्ण भी उनसे ऐसा ही करने की प्रतिज्ञा करता था कि आज अर्जुन का निश्चित वध करूंगा, परंतु जो ही उसका रथ मेरे सामने आता मैं उसे ऐसे मुंह में डाल देता, अपनी ऐसी मधुर झांकी दिखाता कि वो मेरी झांकी पर लट्टू हो जाता, और उधर मैं अर्जुन को इशारा करता कि बड़े बड़े योद्धाओं को तुम अगले मोर्चे में करो ताकि वे कौरव सेना का संहार करें, तो कर्ण उधर चला जाए। सात्यकी वह शक्ति अर्जुन के लिए मृत्यु रूप थी। सच पूछा जाए तो उस शक्ति के बारे में सोच सोच कर मैं रात नींद नहीं लेता था, बैठे बैठे सोचता रहता था कि शक्ति कब काम आए। तो वो घटोत्कच पर पड़ने से व्यर्थ हो गई, बस अर्जुन मौत के मुख से छूट गए। मैं युद्ध में अर्जुन को रक्षा करना जितना आवश्यक समझता हूं, उतना मैं अपने पिता की रक्षा, माता की रक्षा, तुम्हारे जैसे भाइयों की रक्षा और अपने प्राणों की भी रक्षा करना आवश्यक नहीं समझता हूं। तीनों लोकों के राज्य की अपेक्षा यदि कोई दुर्लभ वस्तु मेरे लिए कोई है तो एक अर्जुन है। इसलिए आज अर्जुन को मानो मैंने मरा हुआ जिवाया है, ऐसा समझकर मुझे आनंद हो रहा है। अर्जुन आज मरे हुए जी उठे हैं, यही वजह है मैंने राक्षस को कर्ण से लड़ने के लिए भेजा, उत्साहित किया और कर्ण की शक्ति का वही प्रयोग करवा दिया। महाराज, अर्जुन का प्रिय और हित करने में निरंतर लगे रहने वाले भगवान कृष्ण ने सात्यकी के पूछने पर यही उत्तर दिया। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, इसमें कर्ण, दुर्योधन, शकुनी तथा सबसे बड़ा तुम्हारा अन्याय है। तुमने उनको बार बार क्यों नहीं प्रोत्साहित किया, क्योंकि इंद्रादि देवता भी अर्जुन के चोट को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, तो भी कर्ण ने उसे कृष्ण और अर्जुन पर क्यों नहीं शक्ति छोड़ी और तुमने क्यों नहीं उसको याद दिलाया। संजय बोले, महाराज, हम लोग तो रात दिन यही सोचा करते थे, परंतु प्रातःकाल कर्ण न जाने किन ख्यालों में डूब जाता था, दूसरे योद्धाओं की तरफ उसकी बुद्धि चली जाती, ये सब कृष्ण का प्रभाव है, ऐसे कृष्ण को बार बार प्रणाम करते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्ना